मेरे अत्यंत प्रिय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 26 मार्च 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के एपिसोड में मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, हॉट स्पॉट। मुझे लगा कि हॉट स्पॉट के बारे में इंडिपेंडेंटली बात की जानी चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में मैं आपको हॉट स्पॉट के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हॉट स्पॉट का मतलब क्या है? हॉट का मतलब वैसे तो होता है गर्म, और कहीं ना कहीं इसका संबंध इससे है, गर्म का संबंध इससे है, वो मौसम की दृष्टि से नहीं। हॉट स्पॉट यानी कि ऐसी जगह, स्पॉट का तो अर्थ हो गया स्थान, ऐसे स्थान, ऐसी जगह जहां प्राणियों और वनस्पतियों की बहुत अधिक विविधता पाई जाती हो, चूंकि हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जहां दूसरों की तुलना में बहुत ज्यादा एरिया चाहे जितना भी हो लेकिन वहां इतनी ज्यादा विविधता है कि उसे कहा जाता है भैया ये हॉट स्पॉट है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से। देखिए, इसके जो अर्थ हैं, इसके लिए जो कहा गया हॉट स्पॉट के लिए, इसके लिए दो शर्तें जरूरी हैं। वो दो शर्तें कौन सी हैं आप देखिए, यानी क्योंकि जब आप हॉट स्पॉट घोषित करेंगे किसी भी स्थान को तो उसका कोई ना कोई तो पैरामीटर होगा ना, ये भी आप ध्यान से सुने। पहला ये है कि जो वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं संवहनीय पादप, संवहनीय पादप, पादप को आप पौधे कह लीजिए, तो वस्कुलर जो प्लांट होते हैं उनकी कम से कम उस क्षेत्र में 1500 प्रजातियां हों, है ना। वस्कुलर प्लांट का मतलब आप समझते होंगे, जो जिनमें रेशे हों और उनके पूरे के पूरे जो आप यूं कह लीजिए जल का संचरण उसके माध्यम से होता हुआ, है ना, एक विशेष किस्म की एक तकनीक आप कह लीजिए कि सिस्टम है उन पौधों का, है ना। वो बॉटनी वाले ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, अगर मैं वो समझाने लगूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप अगर इसमें थोड़ा सा और ज्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा देख लें कि किसे वस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। तो वस्कुलर प्लांट्स स्पेशली याद रखिए, प्लांट्स नहीं, वस्कुलर प्लांट्स की 1500 प्रजातियां होनी चाहिए, और विश्व के जो कुल पौधे की जो संख्या है उसका 0.5% से अधिक पौधे हों, तब आप उसको हॉट स्पॉट कहेंगे। और दूसरा जो इसका क्राइटेरिया निश्चित किया गया है वो है कि वहां के 70% या उससे अधिक जो स्थानीय जैव विविधता है, स्थानीय जैव विविधता याद रखिए, एंडेमिक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, यानी कि बाहर से आपने कोई प्लांट ला करके लगा दिया या बाहर से कोई जानवर ला करके वहां छोड़ दिया है, अब कुछ समय के बाद 50-100 साल के बाद वो मर रहे हैं, तो बाहर से लाए गए हैं, स्थानिक नहीं हुए, स्थानिक जैव विविधता। तो 70% जो स्थानिक जैव विविधता है वो नष्ट होने के करीब है, यानी कि उसे चुनौती मिल रही है कि अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये जो यहां की जैव विविधता है वो नष्ट हो जाएगी। जो इन दो शर्तों को पूरा करता है जो क्षेत्र, तो फिर उसे हॉट स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। तो देखिए, पहला वाला तो जो इसकी शर्त, पहली जो शर्त है वो तो बड़ी पॉजिटिव है कि भाई यहां इतनी इतनी विविधता होनी चाहिए। जो दूसरी शर्त है वो निगेटिव है कि भैया आप उसको बचा नहीं पा रहे हैं, उसके सामने चैलेंजेस आ गए हैं। तो ये घोषित ही इसलिए किए गए हैं ताकि उनको उन क्षेत्रों की जैव विविधता को बचाने के लिए अतिरिक्त ध्यान दिया जा सके। आपकी सामान्य जानकारी के रूप में मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि पूरी की पूरी दुनिया में इस तरह के 36 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, 36, ताकि उन्हें बचाया जा सके। और आपको ये जानकर के फिर से खुशी होगी कि आउट ऑफ दिस 36 जो 4 हॉट स्पॉट हैं वो भारत में हैं। आप देखिए कि भारत जैव विविधता की दृष्टि से कितना संपन्न देश है। पूरी दुनिया में 36 है और उसके 4 भारत में है, ये बहुत बड़ी बात है। आप पर्यावरण की दृष्टि से भारत के महत्व को समझ सकते हैं और उसकी संवेदनशीलता को भी समझ सकते हैं कि हम शुरू से पर्यावरण के प्रति कितने सकारात्मक नजरिए के साथ जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब ये बात अलग है कि धीरे धीरे औद्योगिकरण के कारण या दूसरे और बहुत सारे रीजन्स से अब वो कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दुनिया के दूसरे देशों से काफी बेहतर हैं। और ये जो हॉट स्पॉट है जो चिन्हित किए गए हैं, जो 36 हैं, ये जो पूरे के पूरे विश्व के जो क्षेत्र हैं, जो लैंड एरिया है, उसके 2.3% क्षेत्रों में फैले हुए हैं, 2.3% क्षेत्रों में। और विश्व की लगभग 60% प्रजातियों की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती हैं, हॉट स्पॉट क्षेत्रों में। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, देखिए वो एंडेमिक है, स्थानिक है, वो बहुत मायने रखती है ना, क्योंकि स्थानिक चीज ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे स्थानिक के बारे में मैं बताना चाहूंगा, जैसे काली मिर्च आप ले लीजिए, तो काली मिर्च भले दुनिया में और कहीं भी बोई जाती हो, या यूं कह लीजिए कि भारत में ही आप दूसरी जगह लगा ले, काली मिर्च आप देहरादून में पैदा करने लगे, ठीक है, लेकिन जो काली मिर्च है वो केरल की स्थानिक वनस्पति है, स्थानिक उत्पाद, वो वहीं का ही है, वहीं वो बेहतर तरीके से होता है, क्योंकि वो वहां का नेचुरल वेजिटेशन है, आप कह लीजिए, है ना, तो उसे हम कहते हैं स्थानिक। तो दोस्तों, अब हम आते हैं भारत के जो 4 हॉट स्पॉट हैं उनके ऊपर। आप इसे ध्यान से सुने, क्योंकि ये भी एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और प्री एग्जामिनेशन आपके बिल्कुल नजदीक आ चुका है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा प्री की जरूरत को ध्यान में रखते हुए भी अपनी कुछ बातों पर ज्यादा जोर दे रहा हूं, ताकि आपके अंदर समझ भी विकसित हो जाए और साथ ही साथ जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव किस्म की जो बातें होती हैं वे भी आप तक पहुंच जाए। और मुझे बेहद खुशी होगी कि मैं खासकर बायोडायवर्सिटी को लेकर के जो इतनी लंबी सीरीज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उनमें से अगर 1-2 प्रश्न भी इस बार के प्री एग्जाम में पूछ लिए गए तो मुझे लगता है कि मेरी जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी और इससे मुझे बहुत आत्मसंतोष मिलेगा। तो दोस्तों, आइए अब हमारे जो 4 हॉट स्पॉट हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला है हमारा वेस्टर्न घाट्स। याद कीजिए कि जब हम भारत के जैव भौगोलिक वर्गीकरण की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पश्चिम घाट है उसे हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। उसका कारण बहुत साफ है, कारण यह है कि वो समुद्र के निकट है, समुद्र के निकट होने के कारण वहां वर्षा बहुत होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से भी आप देखिए कि ज्यादा दूर नहीं है, लगभग उसके आसपास, या आसपास क्या है, वो आ ही जाता है, उष्णकटिबंध में ही आता है वो, तो वहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है, और बहुत ज्यादा वर्षा होने के कारण वनों की दृष्टि से बहुत समृद्ध है वो घाट, और आप जीव जंतुओं की दृष्टि से भी कह सकते हैं कि बहुत समृद्ध है, और बहुत ज्यादा वहां आपको उभयचर भी मिलेंगे जिसे आप एम्बिफियंस कहते हैं, और सरीसृप की भी प्रजातियां मिलेंगी जिसे आप रेप्टाइल्स कहते हैं। और इस पश्चिम घाट में ये उभयचर और सरीसृप जितने पाए जाते हैं इतने दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। देखिए, इन चीजों के बारे में हमारी जानकारी नहीं होती, और चूंकि भूगोल का सीधा संबंध इससे नहीं होता तो भूगोल में भी ये बातें नहीं बताई जाती हैं, लेकिन बायोडायवर्सिटी में जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि सच में कुछ मायनों में हमारे जो क्षेत्र हैं वो कितने समृद्ध हैं। जहां तक प्लांट की बात है, इस पश्चिमी घाट में 2500 से अधिक जीन्स वाले, देखिए शुरुआत में मैंने आप कहा था कि जो हम बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं तो उसका एक जीनेटिक भी होता है, जीन्स के आधार पर उनकी प्रजातियों की पहचान करते हैं। इसी क्षेत्र में 2500 जीन्स वाले और लगभग 6000 प्लांट्स, वस्कुलर प्लांट्स उस एरिया में मिलते हैं। बता चुका हूं कि केरल जो काली मिर्च है, केरल मैंने एक स्टेट का नाम लिया, रीजन को आप ले लीजिए वो ज्यादा सही होगा, कि जो काली मिर्च है यहाँ की एंडेमिक प्रजाति है, स्थानिक प्रजाति है, और भारत का जो 4 हमारे जो हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं उसमें जो सबसे ज्यादा वैविधता वाला जो हॉट स्पॉट है वो वेस्टर्न घाट, ये आपको याद रहना चाहिए। इन चारों में से, चारों पर हम बाकी 3 पर आएंगे, उनमें जो टॉप पर है वो पश्चिमी घाट है, और इसीलिए मैं इसकी चर्चा पहली मतलब फर्स्ट पोजिशन पर कर भी रहा हूं। दोस्तों, पहले इस क्षेत्र में आप सोचिए कि 1,90,000 वर्ग किलोमीटर, बेहतर होगा कि यह डेटा आपको मालूम हो, 1,90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनस्पतियां थीं, जो अब घटकर, सोच के देखिए, 43,000 वर्ग किलोमीटर रह गए, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर, सोच करके देखिए कि कितना कम हो गया है, 20% रह गया है, और अगर इसे बचाने की कोशिश नहीं की गई तो और ज्यादा कम होते चले जाएंगे, और हॉट स्पॉट का क्या होगा। तो इसीलिए आपको उसके पैमाने में आपने देखा कि चुनौती मिल रही हो, तो ये चुनौती यहां आप देख रहे हैं, इसीलिए मैंने स्पेशली इस पॉइंट को यहां मेंशन किया है, तो इसे फिर हॉट स्पॉट घोषित किया गया। हमारा जो दूसरा क्षेत्र है वो डेफिनेटली हिमालय रीजन तो है ही है। जब हम हिमालय रीजन की बात करते हैं तो इसमें थोड़े से दूसरे देश भी आ जाते हैं, जिसमें भूटान का कुछ हिस्सा आ जाता है, नेपाल का कुछ हिस्सा भी आ जाता है, और भारत का हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वह तो आता ही आता है। इसमें यह आइडेंटिफाई किया गया है कि लगभग 165 प्रजातियां ऐसी हैं जो नष्ट होने के करीब हैं, और जो नष्ट होने वाली जो प्रजातियां हैं मैं आपको नाम बता दे रहा हूं सिंपल तरीके से। उसमें है एक सींग वाला गैंडा, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, ड्रैगन फ्लाई, चियर तीतर, हिमालयी बटेर, हिमालयन गिद्ध और हिम तेंदुआ, ये ऐसी प्रजातियां हैं जो नष्ट होने के करीब हैं। तो दोस्तों ये था हिमालयन रीजन। और तीसरा है इंडो वर्मा रीजन, इंडो वर्मा क्षेत्र, इसमें भी दूसरे राष्ट्र भी आ जाते हैं, लेकिन इसमें भारत भी है। भारत का हमारा जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वो है म्यांमार है, चीन का यूनान प्रांत है, प्रोविंस है, चीन का छोटा सा हिस्सा है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, ये सारे देश इसमें आ जाते हैं, इस पूरे के पूरे रीजन में। इस पूरे के पूरे क्षेत्र में लगभग 13,500 पौधे हैं, जिनमें से जो 50% पौधे हैं अन्य कहीं नहीं पाए जाते। 13,500 में से जो 50% जो पौधों की प्रजातियां हैं वो इंडेमिक हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि बंदर की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, राइट। जो चौथा है वो है सुंडालैंड रीजन, सुंडालैंड रीजन। इस सुंडालैंड रीजन में देखिए अभी हमारा छूट रहा है ना एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वो इसी में आता है। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया, वो इसी रीजन में आते हैं। ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये मैंग्रोव, समुद्री घास और प्रवाल भित्तियां जिसे आप कोरल रीफ कहते हैं की दृष्टि से अद्भुत है। इस क्षेत्र में जो समुद्री वैविधता है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कछुए मिलेंगे, वेल्स, डॉल्फिन, घड़ियाल, मछली, झींगा जिसे आप प्रॉन्स कहते हैं, झींगा मछली जिसे आप लॉबस्टर कहते हैं, सीप, सी शेल्स कहते हैं, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन होता यह है कि जहां इस तरह के संसाधन होंगे उनका दोहन भी बहुत ज्यादा होगा, और जब दोहन बहुत ज्यादा होने लगेगा तो सीधी सी बात है कि उन पर खतरा भी मंडराने लगेगा, और वही इस सुंडालैंड क्षेत्र के साथ हो भी रहा है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको भारत के हॉट स्पॉट के बारे में दी है। हाँ, एक सजेशन मैं जरूर और देना चाहूँगा, और वो ये कि मेरे लेक्चर सुनने के साथ साथ बेहतर होगा कि यदि आप उन टॉपिक्स को किताबों से भी पढ़ते जाएंगे तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके और अच्छे मजबूत होते जाएंगे। तो दोस्तों अब इस टॉपिक को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।